मुनि की लीलामृत के नाम से जो शास्त्र है इसको पढ़ते हैं, लेकिन आज विशेष गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के तिरुभाव तिथि है, तो उनके जीवन के अंदर थोड़ी झांकी देखेंगे। लेकिन एक भजन, जब हम कोई भी वैष्णव आचार्य का तिरुभाव तिथि होता है, तिरुभाव तिथि का मतलब जब वो इस संसार से अपने भगवत सेवा का काम समाप्त करके और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। ये दो शब्द है प्रायः बाहर आपको साधारण व्यक्ति किसी आदमी का शरीर छोड़ने के ऊपर कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। कोई साधु महात्मा शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया। तो वैष्णव जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं नित्य लीला में प्रवेश किया। तो ये पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं। स्वर्गवासी साधारण व्यक्ति जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, जो अपने यज्ञ आदि के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए स्वर्गवास जाना कहते हैं। और जो ज्ञान के मार्ग से भगवान की ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया महात्मा। लेकिन भगवान के भक्त वैष्णव वो भगवान की लीला में प्रवेश करके भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, तो जब वो संसार से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो इस दिन को हम कहते हैं तिरुभाव तिथि। एक आविर्भाव होता है, मतलब उनका इस संसार में आना, जन्म लेना, और तिरुभाव का मतलब आंखों से ओझल हो जाना। हम इन दोनों को जन्म और मरण इसलिए नहीं कहते हैं कि आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं है, थोड़े दिनों के लिए देखने में आते हैं किसी विशेष शरीर के अंदर, फिर उस शरीर को छोड़ के वापस अपने जहां से आए थे उस काम में वापस लग जाते हैं भगवान के धाम में, तो तिरुभाव तिथि कहते हैं। लेकिन फिर भी जब ऐसा कोई महात्मा अपने भक्तों से के आंखों से ओझल हो जाता है, उनको नहीं दिखता है, तब भक्तों के भाव जुदाई के, उसके विरह के भाव उनके हृदय में होते हैं। तो ऐसा ये नरोत्तम दास ठाकुर, थोड़े दिन पहले उनका भी उत्सव था, नरोत्तम दास, नर उत्तम मतलब नरों में श्रेष्ठ, नरोत्तम दास ठाकुर उसको कहते हैं। कोई बहुत विशेष व्यक्ति होता है जिसकी पूजा प्रतिष्ठा की जाए, जिसका मान सम्मान बहुत हो, तो उसको उपाधि दी जाती है ठाकुर की। पहले जमाने में ठाकुर, पहले वृंदावन में ठाकुर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ठाकुर जी। और ये ठाकुर शब्द वैसे जो रक्षा करने वाले क्षत्रिय हुआ करते थे उनको भी ठाकुर कहते थे, कि जो रक्षा करते हैं, और जो शरीर की नहीं जो आत्माओं की रक्षा करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान देकर, और ऐसे कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उसको भी ठाकुर की उपाधि दी जाती है। तो नरोत्तम दास को ठाकुर की उपाधि दी गई थी कि नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके बहुत प्रिय शिष्य भी थे कविराज, क्या नाम था कविराज का, रामचंद्र कविराज, बहुत उनके आत्मीय थे। उनके शरीर छोड़ने के समय, उनके तिरुभाव के समय में उनके भाव हृदय में ऐसे हुए, तब उन्होंने ये एक भजन गाया था, जो भजन आपने अभी सुना। उसका पहला शब्द है जे आनीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जे आनीलो प्रेम धन, जिसने प्रेम का धन, जो प्रेम का धन लाया था। तो प्रेम का धन क्या है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये संकेत है चैतन्य महाप्रभु की प्रति, जो भगवान श्री कृष्ण अपने संग में अपनी अहलादिनी शक्ति भक्ति निपुण को लेकर कृष्ण प्रेम का दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, और वो क्या दे रहे थे, प्रेम का धन दे रहे थे। देने में कंजूस तो नहीं थे, नो करुणा प्रचुर, वो प्रचुर प्रचुर मात्रा में, उनके हृदय में इतनी दया थी, इतनी करुणा थी, वो किसी को भी देख के उसके उसकी योग्यता को न देखते हुए, पापी हो तामर हो कैसा भी हो, उसका उद्धार करने में उनके हृदय में बहुत करुणा प्रचुर मात्रा में, बेअंत करुणा थी, करुणामय थे। और उनको उनके लिए एक शब्द रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदन्नाय। दान देने वाले को दानी बोलते हैं, तो दानी महावदन्याय, महान दान करने वाला, जिसके बराबर और कोई दान नहीं कर सकता हो, उसको बोलते हैं महावदन्याय। क्या महावदन्याय, क्या बड़ा दान किया? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम दिया। तो जिसने कृष्ण का प्रेम दिया था, हेनु अभी कहां गया? केथा गोला आचार्य, वो कहां चला गया? ये जो प्रेम का धन लाया था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का, कहां चले गए? और फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके सारे जो पार्षद उनके संग में आए थे, छह गोस्वामी गण, उनकी स्मृति उनको आती है और एकदम कहने लगते हैं, कहां मोरा स्वरूप, कहां सनातन। स्वरूप दामोदर, जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी और उनके बहुत आत्मीय साथ रहे, दो ही स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ऐसे थे जिनके संग बैठ के चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और चिंतन करते थे। तो बहुत अंतरंग जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, और ये दोनों राधा की दो सखियां जो ललिता और विशाखा थी, तो उनका जो भाव था, उनको स्मृति, महाप्रभु के बाद किसकी स्मृति आ रही है? कहां? स्वरूप सनातन, फिर सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी कहां है, जिन्होंने सिद्धांत स्थापित किए पूरे वृंदावन के अंदर सब गोस्वामियों का प्रतिनिधि होके। और फिर कहां दास रघुनाथ पति तपावन, रघुनाथ दास गोस्वामी पति तपावन, जो पतितों का उद्धार करने वाले, वो कहां है? इन सब का एक एक का नाम लेके याद कर रहे हैं। तो इसका भाव ये है कि जब किसी आचार्य का त्रोभाव होता है, तो हमारे हृदय में उन सब की कृपा को याद कर कर, उनके नाम लेकर ऐसे भाव आना चाहिए, वो सब कहां चले गए, हम अभागे हैं, उनका दर्शन तक नहीं हुआ, चलो आज उनका नाम लेने से हमारा हृदय में कुछ उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे भाव लेकर एक एक का नाम लेकर कहे कहां गए वो। कहां मोरा भट्ट युग, दो भट्ट, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास भट्ट, युग का मतलब जोड़ी, कहां दोनों भट्ट हैं? ये रघुनाथ दास भट्ट और गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन मंदिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा सालंग राम से भगवान त्रिभंग ललित राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए थे। केवल उनके मन का भाव था कि ये मेरे को पोशाक दे के गया है कि किसी ठाकुर को पहनाऊं, मेरे पास तो ठाकुर जी है नहीं, ये सालंगराम जी गोलमोल है, इसको मैं कैसे वर्षल आभूषण पहनाऊंगा। रात को सोए और सुबह उठ के देखते हैं को ठाकुर तीन जगहों से टेढ़े और थोड़ा सा एक दांत भी बाहर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, मुस्कुराते हैं महाराज को देखकर। ये क्या हो गया? सबको बुलाया, गोस्वामी को देखो ये रात तो शिला रखी थी, अभी इसको ये कैसे हो गए हैं? तो सबने देख के देखा, बोला इसका तो ये मुखमंडल तो गोविंद देव जैसा दिख रहा है, इसके चरण तो मदन मोहन जैसे हैं, इसका वक्षस्थल तो गोपीनाथ जैसा है, तीनों ठाकुर गौरियों का प्राण धन वो तो एक में प्रकट हो गए हैं। तो तीन ठाकुर गौरियों के प्राण धन है, हाँ क्या, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये तीनों हमारे मदन मोहन जी ठाकुर हैं, संबंध के ठाकुर हैं, अभिधेय के ठाकुर गोविंद देव जी है और प्रयोजन के ठाकुर गोपीनाथ है, तो ये तीनों एक में ही प्रविष्ट हो गए। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे महात्मा है, उनकी स्मृति आती है। और फिर कहते हैं एक काले कोथा गैला गौर नटराज, और गौर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो नटराज नृत्य करके जगह जगह लोगों को भगवान के नाम में आकर्षित कर रहे थे, वो सब कहां चले गए? अभी भी कभी भक्तों के मन में ये भाव आते हैं कि हमारे बहुत से हम में से यहां जीवित थे, पैदा हो चुके थे, प्रभुपाद जी महाराज इसी धरती के ऊपर यहां चले हैं, इसी दिल्ली के अंदर छिप्पीवाड़ा में रहे हैं और बहुत अधिक समय वृंदावन के बाद दिल्ली में उन्होंने अपना व्यतीत किया है, बहुत से लोगों से मिले, लेकिन हमें कभी अभाव लगता है, अरे हम कहां अभागे रह गए, उनका दर्शन नहीं हुआ। तो ये भाव आना हृदय में स्वाभाविक भक्त के लिए है कि ऐसे भक्तों की प्रति हमारे हृदय में लालसा होनी चाहिए, उनके संग की। तो उनके उनके रूप का संग नहीं, उनके शरीर का संग नहीं, तो उनकी वाणी का संग, उनकी उनके जो वचन है उनका संग करने के लिए हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो कहां गया गोटा गोरा नटराज, और फिर क्या कहते हैं, अब अपनी स्थिति बताइए, बोला ये सब चले गए, मैं अकेला बैठा हूं, अब किसका सहारा लूं, किसका संग करूं, पाषाण कूटी भी माथा, पत्थर के ऊपर अपना माथा मारूं, जब मैं आग में जल जाऊं, आग में अपने आप को डाल दूं, अनले पाशी बो, आग में चला जाऊं, गौरंगा गणेरा ना ही कथा गेला, और अभी सब गौरंगा महाप्रभु के पार्षद जब चले गए, मैं किसका संग करूं, जो मेरा प्राण थे, जिनके जिनके संग में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, मेरी भक्ति बढ़ रही थी, वो तो सब चले गए, अब मैं उनको कहां ढूंढूं। सब संगीर संग जे कोयलो विलास, से संग ना पाए बा कांदे नरोत्तम दास। अरे जिनके संग में, कविराज आदि के संग में मैं भगवान का कीर्तन और भजन करता था, आज वो सारे संगी भगवान की कथा कीर्तन में मेरे, जिनमें मैं विलास आनंद लेता था, वो सब चले गए, अब तो मैं रो रहा हूं नरोत्तम दास खाटू, कहां उनको ढूंढूं। तो ये भजन हम जब भी गाते हैं तो कोई वैष्णव ठाकुर की तिरुभाव तिथि के इस भजन को गाते हैं, तो इसके भाव को समझना चाहिए कि ये भाव भक्तों का अपने पूर्व आचार्यों के प्रति बहुत बड़ा आदर का भाव है, उनकी उनके विरह में, उनकी जुदाई में, उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में कैसे वो संभाल के रखें और उनकी कृपा के लिए सदा के लिए कांक्षी रहे, ये भाव है। तो आज इसी श्रृंखला में, इसी परंपरा में, इनके नाम नहीं है इसमें क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर इन महात्माओं से पहले हुए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के ये पहले 6 गोस्वामी हुए वृंदावन के, उसके बाद 6 गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये तो एक ही परिवार के 3 थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी पहले महाप्रभु के बाद ये 6 रहे जिन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को लिखित रूप में शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, और उनके बाद 3 प्रभु और आए जिन्होंने उसका दूसरी बैच आई जिसने उसका प्रचार किया, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। इनके बाद गौड़िया वैष्णवों के जो नेतृत्व करने वाले रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ रहे उनके संग में बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण के समकालीन उनके शिष्य के शिष्य रहे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 130 से लेकर 150 साल की आयु तक रहे ऐसे मान्यता है, तो 130 से अधिक साल तक वो जीवित रहे, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे एक भागवत दास बाबा जी, उनके शिष्य हुए गौर किशोर दास बाबा जी जिनका आज तिरुभाव तिथि है। तो ये परंपरा जो चैतन्य महाप्रभु से नीचे चलती आ रही है उसकी कड़ी में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य भागवत दास बाबा जी महाराज उनके शिष्य रहे हैं। अब ये बात प्रभुपाद जी महाराज को तो सब मंदिरों में आप विराजमान देखते हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी महाराज ने अपने गुरुजन का शरण लिया, उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की पूरे भारतवर्ष में, बर्मा तक और नेपाल तक जहां आवश्यकता थी वहां तक प्रचार किया चेतना महाप्रभु की शिक्षाओं का, लेकिन उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार हो, और उन्होंने उस समय उनके एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी बोन महाराज को इंग्लैंड भेजा था, और 3,000 रुपया पर माह महीना उनको यहां से भेजते थे खर्चे का, ₹3,000 महीना यहां से इंग्लैंड, जैसे पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं भेजते हैं ना, ऐसे उनको भेजते थे कि जाके प्रचार करो, लेकिन किसी कारण से वो प्रचार नहीं कर पाए। जब वापस लौट के आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के दूसरे शिष्य प्रभुपाद जी से मिले, तो प्रभुपा जी उनको कहते थे बड़ा साहब, साहब लोग जो अंग्रेज होते हैं उनको साहब कहते हैं, साहब लोग कहते थे पुराने बंगाल में। तो ये बड़े साहब के, बड़े साहब से हम मिले तो हमको बोला आपको खाना नहीं आता है चमचा कांटा से, चमचा कांटा से नहीं खाओगे तो आप कैसे प्रचार करोगे पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद ने कहा मैं उनकी शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहा हूं, मैं उनको हमारी तरह जीने को सिखाने जा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी फिर यहां से जाके पाश्चात्य देश में प्रचार किया और पूरे विश्व में इस्कान को का आंदोलन स्थापित किया और 66 में इस्कान की पंचीकरण किया न्यूयॉर्क में। तो इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज अकेले एक ही शिष्य थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, एक ही शिष्य उन्होंने किया था। और गौर किशोर दास बाबा जी का शिष्य क्यों, उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी को गुरु स्वीकार किया क्योंकि उनके अपने पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त उनका नाम था, बहुत बड़े पढ़े लिखे अंग्रेज शासन में एक जज थे, मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में। वो मजिस्ट्रेट होते हुए बहुत बड़ी आयु में जाकर उन्होंने चेतना महाप्रभु की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में लिखा, बंगला भाषा में लिखा, और अंग्रेजी भाषा में भारत से बाहर उनके पुस्तक उस जमाने में अमेरिका के लाइब्रेरियों तक पहुंचे थे। और उनके उनके विशेष कार्य को देखकर अंग्रेज सरकार ने एक रेल की लाइन छोटी उनके घर तक बनाई थी, उनके गांव में उनके घर तक बनाई थी। गोद्रुम द्वीप में उन्होंने अपना घर बनाया था, सुखद कुंज, स्व आनंद सुखद कुंज एक घर बनाया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, कोई 1897 में बनाया है, समथिंग लाइक दैट। तो वो ऐसा एक स्थान था उनका घर जहां चार पीढ़ियां साथ बैठ के भजन करती थी, जैसे राधा दामोदर मंदिर है ना अपना वृंदावन में, इसके आंगन में ये 6 गोस्वामी और 7वां लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, ये सब बैठ के रोज गोष्ठी किया करते थे। तो इतने सारे महात्मा एक जगह पे इकट्ठे हुआ करते थे। तो शिवानंद सुखद कुंज ऐसा स्थान है जहां जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये चारों एक समय में इकट्ठे हुआ करते थे। तो ये बहुत विशेष स्थान था भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर दीक्षा तो पहले कहीं और से ली थी, लेकिन शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को मानते थे और उनकी शिक्षा के अनुसार विशेष रूप से उन्होंने एक स्थान चेतना महाप्रभु के जन्म स्थान योग पीठ को मायापुर में जहां अभी है उसकी खोज की थी, और जगन्नाथ बाबा जी महाराज स्वयं जाकर वहां उस स्थान को कहा था यही महाप्रभु जन्म स्थान। तो उन दोनों की महाप्रभु के जन्म स्थान के ढूंढने में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर दोनों का योगदान है। ये विशेष पूरा वैष्णव संप्रदाय के लिए विशेष स्थान ढूंढा था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाया करते थे गौर किशोर दास बाबा, अपना भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, तो उनको अपना गुरु समान मानते थे। अब भक्ति, अब जिनका आज तिरुभाव तिथि है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये कैसे थे, एक श्लोक इसके लिए लिखा है। आप श्लोक ये पढ़ते हैं, हम इस श्लोक को इसलिए पढ़ते हैं कि ये श्लोक के द्वारा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं नमामि विष्णु पदाय, ऐसे ये श्लोक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो पढ़िए, नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्त्ये विप्रलंबार सांबुद्धे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो गौर किशोराय, हम गौर किशोर बाबा जी महाराज को नमस्कार करते हैं। बोला कैसे है, साक्षात वैराग्य मूर्ति। वैराग्य का अर्थ होता है संसार से निवृत्त हो आदमी, किसी चीज में आसक्ति नहीं हो। और एक उसका दूसरा अर्थ होता है विशेष राग, जिसका भगवान के भजन में विशेष राग हो और उसके पास इतना अवकाश ही नहीं हो कि दुनिया की तरफ देख भी सके। साक्षात वैराग्य मूर्ति। साक्षात वैराग्य मूर्ति कहने का अर्थ यह है भगवान में उनको इतना अनुराग था, इतना अनुराग था, इतना अनुराग था कि साक्षात वैराग की मूर्ति भगवान के भजन में इतना तन्मय थे कि एक स्तर के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के मुख से ये शब्द निकला। आज ये दिन है ना, तिरुभाव उनका दिन है, ये एकादशी का दिन था कार्तिक महीने में, ये बात है 1915 में, इस महीने में कार्तिक में उनका तिरुभाव जब हुआ तो वो रहते थे जहां कुलिया ग्राम में, जहां रहते थे बंगाल में, एक धर्मशाला में रहते थे। और उस धर्मशाला में जब उनका तिरुभाव हुआ तो उस समय वहां के जितने भी बाबा जी, अच्छा एक बात यहां आपको बता दें, बाबा जी किसको कहते हैं? वैष्णव साधुओं में चेतना महाप्रभु के बाद छह गोस्वामी, इनका नाम तो गोस्वामी है लेकिन ये जीवन उनका बाबाजी जैसा था। बाबाजी क्या करते हैं, सफेद कपड़ा नीचे पहनते हैं, घुटने से ऊपर जितना, नीचे लंगोट एक छोटा कपड़ा, कंधे के ऊपर गमछा रख देते हैं और एक कंठी माला उनका धन होता है जो गले में होती है, और एक माला जपने की, इनके अलावा और कोई धन उनके साथ नहीं होता है। तो इनके बाद बाबाजी वेश धारण करने वाले, बाबाजी एक वेश लिया जाता है, वेश का मतलब खास ड्रेस, बाबाजी की, बाबाजी का दीक्षा होती है तो बाबाजी प्रणाली चलती है। ये सिद्ध जो पुरुष होते हैं, परमहंस होते हैं, उनको बाबाजी कहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ये छह गोस्वामी और ये हमारे गुरुजन गोरकिशोरदास बाबाजी और जगन्नाथदास बाबाजी, ये बहुत बड़े परमहंस थे, हम इनका नकुल नहीं कर सकते, हम उस स्तर के ऊपर नहीं है, इसलिए हम वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत सन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं। तो सन्यास आश्रम को ग्रहण करने का अर्थ अपने आप को वर्ण आश्रम व्यवस्था में नीचे रखना, इन परमहंस महात्माओं के समान अपने आप को नहीं बिछाना, ये उनका भाव था। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको कि बाबा जी महाराज बहुत ऊपर का स्थान होता है वो संसार से। तो वो जब तिरुभाव हुआ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का, तो बहुत से बाबाजी जो रहते थे गौर मंडल में, नवद्वीप में, नवद्वीपों में, वो सब वहां इकट्ठे हो गए। और सुबह सवेरे प्रातः काल को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ब्रह्मचारी थे, तभी अभी तक सन्यास नहीं लिया था, वो भी कुलिया ग्राम पहुंचे सुबह सवेरे। तो सब बाबा जी कहते हैं इनकी समाधि हम बनाएंगे, इसकी समाधि हम बनाएंगे, ये बड़े महात्मा परमहंस हमारे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहे कि नहीं, इसकी समाधि आपको नहीं, इसकी मैं अकेला इनका शिष्य हूं। उन्होंने बोला तो आप सन्यासी नहीं है, तो आप वैरागी एक विरक्त महात्मा की कैसे समाधि बनाएंगे, आप सन्यासी नहीं है। तो उधर इतना बड़ा हंगामा हो गया, हल्ला हो गया कि उस वक्त का जो पुलिस इंस्पेक्टर है वहां आया, वो सिम्हा जी थे पुलिस इंस्पेक्टर, वहां पधारे। तो बड़ा शोर जब हो रहा था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहा कि आप सन्यासी नहीं है। बोला हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं, मैं गौरव से कहता हूं कि मेरे गुरुजनों की कृपा से मेरा जीवन ब्रह्मचार्य का रहा है और मैं अकेला ही एकमात्र इनका शिष्य हूं। और मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, क्या कहते हैं, चुनौती, मैं आपको एक बात आपके सामने रखता हूं कि आप जितने बाबा जी लोग यहां खड़े हैं ना, इनमें से अगर किसी ने स्त्री भोग एक साल में नहीं किया हो तो मेरे गुरुजी को हाथ लगाओ, जाओ समाधि बनाओ। एक साल तो छोड़ो, छह महीने में नहीं किया हो स्त्री भोग बाबा जी लोग, तो हाथ लगाना हमारे गुरुजी को। छह महीने ज्यादा लगते हैं, तीन महीने, एक महीना, अरे तीन दिन में अगर किसी ने ये नहीं काम किया हो तो मेरे बाबा जी को हाथ लगाओ। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा आप कैसे प्रमाणित करेंगे? बोला ये जो कहेंगे उसको मैं मान लूंगा, अगर ये सत्य कहेंगे तो मैं मान लूंगा। और इस चुनौती को सुनते हुए सारे बाबा जी चले गए, कोई एक भी नहीं बचा हुआ, सब चले गए। सारे गौर किशोरदास बाबा जी के जीवन में एक ही बात मिलने को मिलती है, वो कहते हैं कि साधु के वेश में बहुत बड़ा पाखंड हो रहा है इस वक्त में। वो तो अभी 1915 तक जिए है ना, 1830 में उनका जन्म है, 1830 में उनका जन्म है, अभी बांग्लादेश हो गया उस तरफ उनका जन्म था, और 1915 में उन्होंने शरीर को त्यागा है। इस समय में उनकी जीवन का एक ही विशेष, पूरी जीवनी पढ़ते हैं तो एक बात दिखती है, बोलते साधु के वेश में बहुत पाखंड हो रहा है। लोग साधु का वेश धारण के प्रतिष्ठा के लिए, धन मान के लिए, सम्मान के लिए करते हैं, भगवान के भजन के लिए कोई साधु का वेश बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, ये उनकी जीवन में मिलता है। तो मैं बात जो कह रहा था साक्षात वैराग मूर्ति, उसके ऊपर चर्चा चल रही थी। अब जब ये सब सन्यासी, सब साधु लोग चले गए, बाबा जी लोग, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समाधि देने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तैयारी करने लगे। तो उस वक्त कुछ और लोग जो बाबा जी महाराज के निकट थे, वो कहा, बोला बाबा जी महाराज ने अंत समय में एक काम को आज्ञा की थी। उनकी आज्ञा क्या थी? बोला आज्ञा ये थी कि मुझे नवद्वीप के गलियों के अंदर रस्सी में बांध के खींचा जाए ताकि मुझे धाम की धूली लगेगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, हम गुरु महाराज की आज्ञा न मानने का अपराध तो सहन कर लेंगे, लेकिन ऐसे परमहंस की जो निम्रता की ये वाणी है, उसके अनुसार हम इनको नवद्वीप की गलियों में खींचेंगे नहीं। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसको अपने सर के ऊपर उठा के जाए, इसके लायक है। साक्षात वैराग मूर्ति का अर्थ ये है कि साक्षात का मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसे, फिर एकदम कह दें जैसे हरिदास ठाकुर नाम आचार्य ने शरीर त्यागा तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गोद में उठा के कीर्तन करके नृत्य करते हुए जगन्नाथपुरी में जाके समुद्र में उनको स्नान कराया और भिक्षा लेके आनंद बाजार से जगन्नाथपुरी में और सबको भोजन कराया, ब्राह्मणों को बुला के, ऐसे मेरे गुरु महाराज तो साक्षात भगवान इसको गोद में उठा के जाए, ऐसे इसको गलियों में कैसे खींचा जाएगा। ये उनका भाव, साक्षात वैराग्य मूर्ति का भाव यह है कि इतनी वैराग की ये मूर्ति है कि संसार में इसको किसी चीज के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहे। साक्षात वैराग विप्रलंबा, विप्रलंबा कहते हैं भगवान के विरह में, जुदाई में जीना। भगवान नहीं दिख रहे हैं तो हम कितने अभागे हैं। अब भगवान इतना विप्रलंबा भाव में, भगवान के भजन में इतना रहते थे कि वृंदावन में 30 साल रहे, 30 साल वृंदावन में आके रहे, दीक्षा वृंदावन में आके ली और वृंदावन के बन बन में घूमे, कहीं कुटिया तक नहीं बनाई, लेकिन केवल भजन में रहे। तो वृंदावन के साधु ने इनको नाम दिया भजन आनंदी महाराज। साधु दो प्रकार के होते हैं, एक भजन आनंदी होता है, केवल भगवान के भजन में लगा रहता है, संसार से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे साधु ऐसे होते हैं, उनको गोष्ठी आनंदी बोलते हैं। गोष्ठी आनंदी का मतलब भजन आनंद के अंदर रहते हुए भी दूसरों का कल्याण करने के लिए, संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए धर्म का प्रचार करते। तो गोष्ठी आनंदी और भजन आनंदी दो प्रकार के साधु हैं। ये साधु भजन आनंदी थे, इन्होंने कहीं प्रचार नहीं जाकर किया, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ा प्रचारक भक्ति सिद्धांत सरस्वती पैदा किया, एक शिष्य। जैसे 6 गोस्वामी ने कहीं प्रचार जाकर नहीं कहा, लेकिन वृंदावन के अंदर बैठ के उन्होंने चेतना महाप्रभु के सिद्धांतों को ऐसे शास्त्रों में लिखा कि आज हम पूरी दुनिया में प्रचार उनके शास्त्रों के आधार के ऊपर कर रहे हैं। तो वो हमारे माध्यम से प्रचार कर रहे, उनका भजन दूसरों के प्रचार का कारण बना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु महाराज को बड़े सम्मान के साथ अपने सर के ऊपर हम उठाएंगे, और उनकी अंतिम यात्रा को बाद समाधि के स्थल के ऊपर समाधि दी गई। तो ये बात हम कह रहे हैं साक्षात वैराग्य मूर्ति। अब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जन्म तो बांग्लादेश में 1830 में हुआ, और कोई उनके पिताजी का नाम बंसीदास कहते हैं, कोई कहते हैं इनका नाम दीक्षा से पहले बंसीदास था। जो कुछ भी हो, एक वैश्य के घर में इनका जन्म हुआ था, और काम ये करते थे अनाज की आड़त का। पहले पिता माता ने विवाह करा लिया और कोई 20 साल से अधिक, 29 साल तक करीब कहीं लिखा है, 20 साल से अधिक ग्रस्त आश्रम में रहे। पत्नी का देहांत हो जाने के बाद पहले भी भगवान की तरफ तो बहुत भाव था, भक्ति थी, पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद वो वहां से अपना घर बार परिवार सब छोड़ दिया और सीधे वृंदावन चले आए। तो जब वृंदावन आए होंगे तो कितना उनका आयु रही होगी, ऐसे लिखा है कि 65 साल के वो थे तब वृंदावन से वो नवद्वीप चले गए। जब पता लगा कि चेतना महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढ के निकाल दिया गया है तो उस जन्म स्थान का दर्शन करने और के लिए वहां 65 साल की आयु, 65 से भी 67 की आयु थी उनकी उस वक्त, तो 30 साल उसमें से कम करें कितना हो गया, 37 में से तकरीबन ये समझिए कि 20 साल रहे गृहस्थ में, तो बस तो शादी उनकी ऐसे 16-17 साल की आयु में शादी उनकी हो गई थी ऐसे लगता है। तो 67 साल की आयु में ये वृंदावन से छोड़ के और जगन्नाथ दत्त बाबा जी के कहने के ऊपर कि अब आप मायापुर में आइए, नवदीप और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, तो फिर वो वृंदावन को छोड़ के चले गए नवदीप में। और जितना महाप्रभु के जन्म स्थान को देखने के बाद उस नवदीप के ग्रामों में भ्रमण करते रहते थे, वहीं रहे। और वहां रहते हुए विशेष रूप से वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाया करते थे और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के पास जाके उनकी भागवत कथा बहुत रुचि के साथ सुनते थे, बड़े प्रेम से उसके साथ उनकी भागवत कथा सुनने के लिए जाया करते थे। कभी रात को वहां रह जाते थे, कभी वहां से निकल के चले जाते थे, लेकिन खाने पीने के लिए कहीं से कुछ लेते नहीं थे, किसी से भिक्षा तक नहीं लेनी है, अपना कहीं से बर्तन कोई मिट्टी का मिल गया, ग्रहण के दिन कोई छोड़ के चला गया उसको धो के गंगा में, कहीं से अन्न उसमें पकाया, अपना थोड़ा सा खा लिया, कपड़ा कहीं गिरा हुआ देखा जहां लोग फेंक के जाते हैं उसको धो के ऐसा कपड़ा बांध दिया, कोई चीज के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, केवल भगवान के भजन में अपने आप को लिप्त रखा करते थे। तो ये विशेष रूप से हमेशा सदा के लिए भगवान के चिंतन में रहते थे और कुछ भी उनको करने के लिए दुनिया में नहीं था, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, किसी से कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन एक ही चीज उनके जीवन में हमको बार बार पढ़ने से मिलती है, जब भी ऐसे लोग दिखावटी साधु आए तो वो बहुत बहुत खरी खोटी बात कहा करते थे और बोलते थे साधु मनोरंजन के लिए नहीं है, साधु तो कैंची की तरह काटने के लिए है तुम्हारी भोग को, ताकि तुम्हारी आध्यात्मिकता जो अंदर में आत्मा का तुम्हारा जो स्वरूप है वो तुम्हारा निखार करने के लिए साधु होता है, तुम्हारे भोग की इच्छा पूरी करने के लिए साधु नहीं होता है। तो साधु की परिभाषा उन्होंने लिखा है कैंची की तरह जो चाकू उठाए, लिखा है जो चाकू उठाए, और कैसा चाकू, जो बोला जो जो बलि के लिए बकरे काटने के लिए चाकू नहीं रखता है कसाई, ऐसा चाकू हाथ में उठाता है और तेरी भोग करने की जो इच्छाएं हैं उनकी बलि चढ़ाता है उस चाकू से काट के, ताकि तुम निर्मल होके भगवान का भजन कर सको, ऐसा उनके साधु का परिभाषा उन्होंने ऐसी लिखी है। और कभी कई लोग उनके पास आने लगे, कहीं वो नहीं जाते थे लेकिन उनका वैराग्य इतना प्रतिष्ठा इतना मान था कि लोग उनके पास आने लगे। एक राजा उस समय में, उस वक्त में क्या जगह का नाम है, कृष्ण नगर नहीं कासगंज को, वहां के महाराज इनके बहुत बड़े प्रेमी मित्र थे, इनके पास आया करते थे राजा जी होते हुए बड़ा भजन करने के। एक दिन उन्होंने अपने आदमी को बोला, महाराज को बोला, बड़ा उत्सव करते हैं हमारे राज में, आप आ जाइए और यहां पधारिए। क्या उनको लेने गए, बोला महाराज के पास, बोला आपको पालकी में ले चलेंगे यहां से कृष्ण नगर और वहां से फिर ट्रेन के अंदर ले चलेंगे जहां महाराज जी के राज में आप चलिए। तो महाराज जी को के आदमी को बोला, देखो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अगर वहां जाऊंगा तो राजा का वैभव देख के मेरे मन में वो भोग की चीजें आएंगी और भोग की चीजें आएंगी तो मैं वापस आके जमीन लेके फिर कुछ अपना मैं बनाऊंगा आश्रम, और मैं आश्रम जब बनाने लगूंगा तो पहली चीज वो मेरा मित्र राजा है ना, उसकी प्रति मेरे अंदर ईर्ष्या होगी कि उससे मेरा अच्छा होना चाहिए। अब मैं अगर राजा के पास जाऊं तो हमारी अच्छी मित्रता है वो खराब हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं राजा जी आप अपना धन जो है ना वो अपने परिवार को अपने मंत्रियों किसी को दान दे के आप आ जाओ मेरे पास, यहां बैठ के दोनों भोजन कर दे। राजा जी को ये समाचार उनको ऐसा लिखा कि मैं वहां आ जाऊंगा तो मैं आपकी और हमारी जो मित्रता है भजन के कारण उसके अंदर बाधा आ जाएगी, ये भाव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वही भाव लिया जब वो प्रभु जो जब वो ओडिशा के राजा से मिलना नहीं चाह रहे थे प्रताप रुद्र से, कि भाई सन्यासी साधु का काम नहीं है कि किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए, वहां जाने से उसके मन में ये सब भाव प्रकट हो जाएंगे भोग के। तो ये महात्मा बहुत ही वृक्त अपना जीवन व्यतीत किए। एक जगह की एक दिन की घटना है, कुलिया ग्राम काफी दूर है, आखिरी 8-10 साल उनके जीवन में उनके आंखों से देखने की रोशनी नहीं रही थी, वो खाते नहीं थे, बहुत प्रयास किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा आप कलकत्ते जाइए, आपका ये शिष्य आपका सेवक मेरा बेटा, मैं आपको बात ये हम आपको कह रहे थे कि गौर किशोरदास जैसा बाबा जी इसको कोई पहचान नहीं सकता है, जो को फटे कपड़े पहन के और भजन कहां करते थे, जहां लोग शौचालय में जाते थे वहां जाके बैठते ताकि कोई आके मेरे को डिस्टर्ब न करे, वहां कोई आएगा नहीं ना इसलिए वहां भजन करते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ऐसा महात्मा मिलेगा नहीं, इसके इससे जाके तुम दीक्षा ले लो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसा बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान, उस वक्त में ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा विद्वान था, वो भक्ति सिद्धांत जैसा विद्वान इसे अनपढ़ बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं था, एक का खा पढ़ा हुआ नहीं था भक्ति सिद्धांत, ये गौर किशोरदास बाबा जी अनपढ़ थे, संस्कृत वर्स्कृत नहीं जानते थे, वो बंगला के दो शब्द जानते होंगे जो उनके हटवानकी में काम आता होगा। तो ऐसे के पास दीक्षा लेने के लिए क्यों भेजा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वयं लिखते हैं कि मुझे बहुत बड़ा गौरव था, मन में अहंकार था, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और बोलने की मुझे बहुत बड़ी कला थी, तो मेरे पिताजी ने देखा जो मेरे गुरु समान थे भक्ति विनोद ठाकुर मेरे शिक्षा, कि ये अहंकार मेरी भक्ति में बाधा बनेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे वृक्त महात्मा के शिष्य बनो जहां से तुम्हारा, और जब मैं अपने गुरु महाराज के पास गया तब मेरा ये सारा अहंकार कापूर हो गया, मैंने देखा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं लेकिन ये अनपढ़ से मुझे दीक्षा आज लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब भजन करने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना कोई बड़ा महात्मा विद्वान होना जरूरी नहीं है। लेकिन न पढ़े हुए भी शास्त्रों का गूढ़ अर्थ समझने के लिए इनके पास लोग आया करते थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास शास्त्रों का अर्थ समझने, वो सिद्धांत सब उनके हृदय में अपने आप प्रकाशित थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके पास, तो उन्होंने बोला मैं तो शिष्य बनाना नहीं है, फिर आखिर बोला कल भाई अगली बार गौरांग महाराज से पूछेंगे तब बनाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं किसी और को गुरु बनाऊंगा नहीं, मैं फिर गंगा में अपने आप को बहा देता हूं। बोले नहीं कहीं अगली बार पूछेंगे महाप्रभु से, जब महाप्रभु कहेंगे। तो फिर एक दिन एक साल के बाद 1898 में 97 में वो गए थे यहां से वृंदावन से मायापुर, 98 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती को उन्होंने शिष्य एक ही शिष्य बनाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप बाबाजी महाराज आप कलकत्ते जाइए अपनी आंखों का इलाज कीजिए, आपका ये शिष्य आपका सेवक है आपकी सेवा करेगा। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी की सेवा नहीं लूंगा, और 1.5 महीने के लिए गुम हो गए। बोला मैं गंगा में अपने आप को जाके, गंगा में मैं कर मर जाऊंगा तो भूत बन जाऊंगा, बोल रहे थे गंगा में मरूंगा तो प्रेत बन जाऊंगा, इसलिए गंगा में नहीं मरूंगा, मैं जाके सरस्वती में डूबता हूं। और चले गए 1.5 महीना 45 दिन दिखाई नहीं दिए, पता नहीं कहां चले गए। 45 दिन के बाद वापस आए और आते ही कहा कि मरने से भगवान नहीं मिलता है, मैंने कोशिश की मरने से लेकिन मरने से भगवान नहीं मिलता है, तो आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलता है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं कलकत्ता, मैं रहूंगा यहां। तो आंखों की रोशनी खत्म हो गई। और एक दिन सुबह 4 बजे का टाइम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने आश्रम में योग पीठ में बैठे हैं, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आके वहां पहुंच गए। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ा आश्चर्य से पूछा आप महाराज जी अभी कैसे आए, कितने बजे पहुंचे? बोला 2 बजे रात को पहुंचा। बोला आपके साथ कोई? बोला कोई नहीं। बोला कुलिया से कैसे चले, गंगा कैसे पार किया, यहां आपको कौन ले आया, आपकी आंखों से तो आप देख। बोला कोई था, मेरे को रास्ता बता दिया, मेरे को यहां छोड़ के। बोला था तो 2 बजे रात का कहां चला गया, यहां सोया क्यों नहीं भाई, आया होता तो आश्रम में रहना चाहिए ना, कहां गया, कौन था? तो हंस रहे थे, कोई था लेके आ गया, मेरे का इच्छा थी आने की मैं आ गया। अरे बाबा तो आपको कौन ले आया है रात को? तो हंस रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपना जीवन का अनुभव से बताया, अब और कौन इसको यहाँ ले आएगा रात को ऐसे बाबा को, तो साक्षात भगवान कोई उंगली पकड़ के इसकी लाए होंगे। ऐसे वृंदावन में मथुरा में एक अभी तक प्रचलित कथा है कि एक व्यक्ति को सुबह सवेरे रोज जमुना स्नान करने का नियम हुआ करता था। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो रोशनी तो लाइटें तो थी नहीं उस जमाने में, एक तो ऊपर काले बादल थे और बहुत घनी बरसात, इतनी ज्यादा बरसात हो रही थी कि रास्ता दिखे नहीं। लेकिन इसका तो नियम था कि मेरे को जमुना स्नान करने जाना, और बूढ़ा लाठी लेके जाता था, अब जाए कैसे। लेकिन कैसे स्नान करके आया तो कोई बच्चा उस वक्त रास्ते में खड़ा है, बोला बाबा बाबा इधर आओ, तेरे को आपको जमुना के लिए चलता हूँ। वो लाठी पकड़ के गया जमुना में स्नान करके। तो घर वालों पूछा कौन तुम्हारे को, कैसे तुम चले गए। बोला बच्चा आया था कोई, पता नहीं कौन हमको लेके गया था, उस वक्त रात को कौन बरसात में बच्चा आएगा। तो भगवान अपने भक्तों को, तो उस दिन ये अनुभव किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कि ये ओमनीसेंट, अंग्रेजी में शब्द लिखा है कि ये सब जगह एक वक्त में हो सकते हैं, जैसे भगवान को शक्ति होती है ऐसी सिद्धियां इनमें इतनी हैं, लेकिन कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं सिद्धियों का। लेकिन भगवान की कृपा से परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, तो सबके हृदय का वो आने वाले आदमी को बगैर देखे के कह सकते हैं कि इसकी दिल में भक्ति नहीं है, ये तो पाखंड करने के लिए यहाँ आ रहा है, ये दिखावा कर रहा है। उनको इस बात का बहुत पता लगता था, तो न आंखें न होते हुए भी बगैर किसी सहारे के चल के इतना चल सकते थे। तो ये संसार के अंदर कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है भगवान की भक्ति करने के लिए, अगर दृढ़ निश्चय हो, पक्का संकल्प हो। तो फिर तो जहां समाधि बनाई थी वहां जिसकी जमीन थी वो जयसूर के किसी की, उसने पहले तो बोला दान देता हूं, बाद में उसने वहां भी अपना कुछ बदमाशी शुरू कर दी, तो 15 साल के अंदर गंगा आके उस समाधि के टुकड़े को ही डुबाने लगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने शिष्यों को भेजा उस समाधि को ऐसे कैसे वहां से उठाए, और राधा कुंड जहां बना हुआ है योग पीठ के वहां उधर दोबारा उनकी समाधि को स्थापित किया। तो ये उन्होंने 15 साल के बाद उस समाधि का, दूसरी समाधि के स्थल पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने समाधि उनकी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं हमारे गुरु बहुत सिद्ध महात्मा थे, जिन्होंने अपना जीवन पूरा मानो कि 37 साल से लेकर 85 साल तक तकरीबन वो जिए, ऐसे लगता है 85 साल तक जिए। तो वो सारा समय केवल भजन में, किसी चीज में लेना नहीं देना नहीं, किसी से कुछ आना नहीं जाना नहीं। कई लोग आए उनके पास कई सेवा करने के लिए, कई बोला कुछ नहीं चाहिए, किसी की सेवा नहीं ली, किसी से कुछ चीज मांगा नहीं, केवल भगवान के सहारे जिए। और भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर की बेटी और उनके बेटे उनसे मिलने जाया करते थे, तो उनके तारे आप बाजार में क्यों, कहा किसी और को क्यों ढूंढ, आपके घर में जितना महाप्रभु का पार्षद बैठा हुआ है शुद्ध भक्त, आपके घर में आप बाहर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं। अरे आप ऐसे उनको छोड़ के आओगे तो वो घर छोड़ के जल्दी चला जाएगा, आप घर में रहोगे तो थोड़े दिन उसका संग कर लीजिए। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मानते थे, और उनसे प्रेरणा लेके भजन में विशेष रूप से भागवत का श्रवण करने में उनको आनंद आता था। ऐसे उनके जीवनी के ऊपर तो बहुत इस किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये बातें विशेष रूप से हमको अच्छी लगी जो हमने आपके साथ शेयर की है। और किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो पूछिए। हरे कृष्णा। सीखना क्या है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से आज, कि हमके जीवन में थोड़ा सा वैराग लाना चाहिए, और वैराग का अर्थ ये निकाल के लाना चाहिए कि हमारा थोड़ा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में राग होना चाहिए, विशेष राग हो जाना चाहिए, तो संसार से अपने आप आस्ते आस्ते वैराग होने लगा। और मृत्यु रूपी मौत की शक्ल में भगवान लाठी मार के सब कुछ हमसे छीन ले, उससे पहले अपनी इच्छा से सब चीजों को अपने से अलग करके और अपने को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करने का संकल्प कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, छोड़ो कुछ मत, लेकिन भगवान से थोड़ा राग करने लगो कि रोज भगवान का दर्शन करने जरूर आएंगे, कोई भी काम हो कहीं से भी जाते हुए एक बार भगवान का दर्शन जरूर करेंगे, आधा घंटा बैठ के भगवान का स्मरण जरूर करेंगे। तो वो भगवान का राग आपको दूसरे बंधनों से आस्ते आस्ते छुड़ाता जाएगा। तो इस वक्त जब छोड़ने का वक्त आएगा तब तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो इस समय इस दुनिया से जाते हुए लोग बड़े दुख से जाते हैं, बड़े बड़ी पीड़ा से जाते हैं, उस वक्त उनको किसी चीज को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, और उस पीड़ा के कारण वो संसार में बार बार आना पड़ता है। इसलिए इस बाबा जी के जीवन से एक ही चीज सीखने को है 30 साल तक 28-29 साल तक ग्रस्त में रहा, भी दुनिया में धंधा भी किया, कारोबार भी किया, सब कुछ देखा, और फिर बोला कलकत्ते जाओ, बोला माया की नगरी में नहीं जाऊंगा, उधर जाने से चारों ओर माया घूम रही है, मैं तो धाम से बाहर जाऊंगा नहीं। और एक और दूसरी घटना बहुत सुंदर उनके जीवन की हमको देखने को मिली, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनके साथ एक पास एक ब्रह्मचारी आके रहा, बोला नौजवान वृक्त हूं मैं। और थोड़े दिनों के बाद बाबा जी को महाराज को पता लगा कि एकड़ का 3 हिस्सा 3/4 एकड़ किसी रानी से जमीन ले लिए, आश्रम बनाएगा। बाबा जी महाराज ने बोला ऐसा कौन धनी इस दुनिया के अंदर है, किसके पास इतनी धनी संपत्ति है कि भगवान के निज धाम का एक कण को खरीद कर सके, भगवान के धाम का वृंदावन की एक धूली की कीमत कोई अदा कर सके, ऐसा कि इतना किसी के पास धन है क्या? उनका कहने का भाव ये था। ये अकबर एक बार, शहंशाह अकबर गए थे वृंदावन में, और बीरबल के साथ जाने से हरिदास की कृपा थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुई थी, तो उनका क्या सेवा करूं आपकी वृंदावन की? बोला केशी घाट के ऊपर पत्थर का टुकड़ा टूटा हुआ है, उसको ठीक करा दो। महाराज बड़ा चिंतित हुआ, बोला मैं इतना बड़ा राजा हूं पूरे भारत का, और मेरे को कहता है कि घाट का थोड़ा पत्थर लगा दो, लेकिन फिर भी ना नहीं कि उधर जाके देखता है तो थोड़ी देर के लिए उसको ऐसी महाराज ने दृष्टि दी को देखता है कि पत्थर तो है नहीं, ये तो चिंतामणि है, ये तो ऐसा हीरा मोतियों का जड़ा हुआ है, मेरे खजाने के अंदर तो एक दाना भी ऐसा नहीं है जो इसकी जगह मैं बना सकूं, तो धाम के एक कण की कीमत कोई चुका नहीं सकता है। तो कहा तुम मूर्ख, यहां एक एकड़ जमीन तुमको किसने बेची, कौन इसका मालिक है और तुम इसका मालिक बन गए? ये तो तुम्हारा भाव भगवान के भजन करने का नहीं है, ये तो धाम के अंदर भोग करने के भाव से आए हो, तुमको इसको रहने का अधिकार नहीं है। अरे हमें एक बार आश्चर्य की बात, कोई मेरे ख्याल अभी 10 साल से ऊपर हो गए, एक बार वृंदावन में हम जा रहे थे अपनी गौशाला से, कि महात्मा मिला हमको, कहा क्या कर रहे हैं? हमने बोला आए हैं वृंदावन में भजन कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छा भजन कर, मैंने कोई जगह देख रहे हैं, कोई मिलेगी थोड़ी एक गज टुकड़ा तो घर बना लेंगे। बोला मूर्ख घर बनाएगा और भजन करेगा, घर और भजन कभी साथ चलते हैं? उसने बोला हमको ऐसे, बोला अरे आप लोगों के गोस्वामी तो पेड़ के नीचे रहकर भजन किया करते, भजन करना है तो पेड़ के नीचे रहना, बाकी घर बना के तो समझो कि घर बना के तो तुम्हारे साथ पूरे घर का वातावरण यहाँ आएगा, भगवान का भजन नहीं होगा, तो धाम में घर बना के भजन होगा ये संभव नहीं है। उसने हमको कहा था, अभी तक हमको, तब से हमको लोग कहते हैं आप घर क्यों नहीं बना रहे? बाबा जी ने बोला है मत बनाओ, नहीं बना रहे। पता नहीं कौन था वो आदमी, कौन था मुझे मालूम नहीं, उसने हमको मना कर दिया, हमने बनाने के बाद विचार ही मन से निकाल दिया। अब जहां मिल रहा है कोई दे रहा है, भगवान वहां रह जाएंगे। अब जाने के बाद लोग झगड़ा करेंगे, जितने राजाओं महाराजाओं की कोठियां वृंदावन में बनी हुई, कई राजाओं की कोठियां, राजा आया करते थे वृंदावन में, वो सारे आज लोगों ने कब्जों की, एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, केस चल रहा है, तो ऐसा घर बना के जाओ कि दूसरा भजन के बजाय कोर्ट में खड़े हो, ऐसा झंझट करना काहे के लिए? ऐसा झंझट क्यों करके जाए, बहुत बड़ी समस्या है। तो बाबा जी महाराज ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर है जो धाम के अंदर एक एक कण धूल का खरीद कर सकता है? ये तो कहते हैं हमने 1 एकड़ 2 एकड़ खरीद कर ली, ये तो धाम का अपराध कर रहे हैं ये। लेकिन फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसके भाव में लिखा है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने दो माला मंजिल बनाई, लेकिन उसके बारे में नहीं कहा गौर किशोरदास बाबा ने। क्यों नहीं कहा? बोला इसलिए नहीं कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कभी उसको अपना नहीं माना, वो स्थान मैं उसका केवल देखभाल करने वाला चौकीदार हूं, जगह मारी नहीं है, जगह भगवान की। ये एक विशेषता प्रभुपाद महाराज की आपको पूरे विश्व के संतों में मिलेगी, सब संतों ने अपने नाम से सब आश्रम बनाए हैं, लेकिन इस महाराज ने जितने मंदिर बनाए हैं भगवान के नाम से बनाए। ये रास बिहारी मंदिर है, ये पार्थ सारथी मंदिर है, ये कृष्ण बलराम मंदिर है, हर मंदिर का नाम श्री कृष्ण के संबंध में, अपने नाम से एक मंदिर भी नहीं बनाया, किसी चीज को अपना नहीं माना, अपने आप को हमेशा कहा मैं इनके सेवकों का सेवक हूं और चौकीदार की तरह यहां बैठ के इनकी चीजों की देखभाल कर रहा। ये भाव से धाम के अंदर भगवान का घर बना के और उसके अंदर बैठ के भगवान की सेवा करें तो ठीक है, अपना घर बना के धाम के अंदर रहना बाबा जी की दृष्टि में धाम का अपराध है। तो बहुत से और ऐसे छोटी छोटी कथाएं बाबा जी महाराज की बहुत है, किसी और को कोई स्मृति में है तो आप भी कह सकते हैं, कुछ समय आपको भी देते हैं, किसी को कोई ऐसी याद हो कथा। तो प्राय बहुत कड़े वचन बोले हैं, बोला ये सब पाखंड कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इनसे भजन नहीं हो सकता है, ये तो भजन के नाम में। बहुत से लोग नहीं, तो महाराज एक आया, एक बहुत बड़ा बंगा बांग्लादेश से, उस समय में बड़ा सेठ, बड़ा धड़ा जमींदार आया, कोई कुछ चार पांच अपने सेवक साथ ले आया और ऐसे गिरता हुआ आ रहा है। अरे किसी ने कहा ये भगवान के प्रेम में इतना मगन है कि इसको कुछ दिखता नहीं, इसको पकड़ के आ रहे हैं। बाबा जी महाराज को बोला ये महात्मा आपसे मिलने आया, बोला इसको यहां से निकालो फिर मेरे से बात करो। बोला क्यों? बोला ये दिखावटी बनावटी है, इसका असली कोई भगवान का प्रेम नहीं है। ये लोग 10-20-50 आदमी साथ लेकर और मंदिर में जाते हैं, और जब मंदिर में जाते हैं तब थोड़ी देर के लिए हरे कृष्ण ऐसे कीर्तन करेंगे और फिर गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे अरे महाराज को तो बड़ा भाव आ गया महाराज को, फिर उसको पंखा झेल के बाहर लाएंगे शिष्य, और फिर वो थोड़ा ऊपर देखेगा हरे कृष्ण बोलेगा, फिर सब लोग चले जाएंगे, दो चार उसके पीछे चले जाएंगे, उनको चारों को शिष्य बनाएगा, बोला ठीक है आप मेरे ग्राहक हो, अच्छा आ गए। तो ये दुकान चलाते हैं लोग इस तरीके से, ये पाखंड, ये दिखावा करते हैं, दिखता है कि भगवान का नाम लेते हैं लेकिन इनका अंदर में उद्देश्य होता है कि लोग हमारा महिमा गाएं, हमारी लोग महिमा गाएं, इसलिए वो ऐसे नाटक करते हैं। ये बहुत बड़े ये नाटकीय हैं, इनसे बचना चाहिए। ये बाबा जी महाराज ऐसी बहुत सी, तो उसको बोला इसको छोड़ो, तुमको भजन करना है ना, इसको पहले यहां से निकालो, ये दिखावा कर रहा है, ये असली नहीं है। और फिर लिखा है असली असली कोई होगा तो भगवान से प्रेम है। जैसे कोई स्त्री बाहर जाएगी पब्लिक में कहीं जाएगी तो अपना कोई अंग थोड़ी खोल के किसी को दिखाएगी, तो जब पब्लिक में बैठी और भगवान के प्रेम का जब आपके अंदर कोई ऐसा आता है तो उसको रोकना है, दिखाना नहीं है, ढक के रखना है। ये तो निमाइश करने की चीज नहीं है, बात लोगों को दिखाने की चीज नहीं है कि भगवान का मेरे को बहुत बड़ा प्रेम आ गया, आंखों से आंसू आए, ये किसी को दिखाने की चीज नहीं। आता हो तो भी रोकना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग इसका गलत मतलब निकाल लेंगे। चेतना महाप्रभु रामानंद राय दोनों मिले गोदावरी तट के ऊपर, एक दूसरे को आलिंगन किया, बहुत आनंद में भोगे, लेकिन देखा अरे ये तो गवर्नर है, इसके इतने सारे सेवक हैं, ये अगर देखेंगे हमारे को ऐसे तो ये ठीक नहीं है, रोक लिया अपने आप को, बिल्कुल साधारण हो गए एकदम। तो भाव आता है तब भी रोक लेते हैं, पब्लिक में भाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये प्रदर्शन करने से बहुत जल्दी थोड़ा मान सम्मान मिल जाता है लेकिन भगवान का भजन छूट जाता है। तो ऐसे दिखावा करने की सहजिया भाव नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, ऐसा बाबा जी महाराज का मान्यता थी। कभी उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया और गंगा जी में स्नान किया और भगवान का भजन किया, और गंगा जी की मिट्टी कभी खा लेते, कुछ नहीं खाने को तो थोड़ी सी मिट्टी गंगा के किनारे से खाई, आज का दिन गुजर गया, कल देखेंगे क्या खाने। तो उनके त्याग का हम नकुल नहीं कर सकते हैं, केवल उनकी शिक्षाओं को पढ़ के अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस स्तर का अकेला भजन कोई नहीं कर सकता है, करना भजन संभव नहीं है। जैसे वो कर रहे थे, एक साल तक भक्ति सरस्वती ने निरंजन भजन किया था, लेकिन उसके बाद फिर प्रचार में बाहर निकल आए कि ये बहुत कठिन है, कि वहां भगवान में मन नहीं लगेगा, उन तो संसार की बात है, उस वक्त आएंगे। तो ये बहुत विशेष रूप से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को आज उनके वैराग का एक थोड़ा सा कतरा भी हमारे जीवन में आए कि भगवान से हमारा प्रेम बढ़े, तो हम उनसे ये प्रार्थना करें आज के दिन। सो साक्षात वैराग मूर्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से भक्ति विनोद ठाकुर ने वेश लिया था, बाबा जी का वेश लिया इनसे था, तो आपस में मित्र एक दूसरे को मानते थे, वो ये तो शिक्षा गुरु मानते लेकिन वो अपना मित्र मानते थे, इन्हीं से वेश लिया था। अंतिम दिनों में भक्ति विनोद ठाकुर ने वेश गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से लिया था, और भक्ति सिद्धांत दोनों को गुरु अपना मानते थे, एक को दीक्षा गुरु एक को शिक्षा गुरु। तो ऐसे बड़े महात्माओं के आप सब अनुयायी हो, गौर किशोरदास बाबा जी आपसे 3 पीढ़ी ऊपर है, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत गौर किशोरदास, तो जैसे दादे का दादा होता है इसके समान है। तो हमको गौरव होना चाहिए कि ऐसे महान वैष्णव संतों के हम परंपरा के अंतर्गत अपना भजन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर उनकी शिक्षाओं को उनके जीवनी से कुछ विशेष चीजें लेनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। किसी को कुछ और शेयर करना है तो इस विषय में बाबा जी महाराज की जीवन के विषय में, किसी को याद है ऐसी कथा? नहीं, हरे कृष्ण चलेंगे। श्री प्रभुपाद की, गौर किशोर बाबाजी महाराज की, कृष्ण बलराम की, राधा राधिका रमन की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, दामोदर भगवान की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। श्री राधे श्याम राधा राधिका रमन की जय।